भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय क्रमांक 23 श्लोक नंबर 6। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। हे भूमि देवा श्रुणुत, कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तान् जानित भद्रं वो गोपानो रामचोदितां। हे भूमि देवा श्रुणुत, कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानित भद्रं वो गोपानो रामचोदितां। हे भूमि देवा श्रुणुत, कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानित भद्रं वो गोपानो रामचोदितां। हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के देवताओं, श्रुणुत सुनिए, कृष्ण से आदेश, कृष्ण का आदेश, कारिणः कार्य रूप में परिणित करने वाले, प्राप्तान आए हुए, जानित जानिए, भद्रम कल्याण हो, वह तुम सबों का, गोपान ग्वाल बालों को, नह हम रामचोदितान राम द्वारा भेजे गए। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। ग्वाल बालों ने कहा, हे पृथ्वी के देवताओं, कृपया हमारी बात सुने। हम ग्वाल बाल कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम ने यहां भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप हमारा आगमन स्वीकार करें। तात्पर्य, भूमि देवा शब्द ब्राह्मणों का द्योतक है, क्योंकि इन्हें भगवान की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है। कृष्ण भावनामृत का दर्शन इस पृथ्वी के मनुष्यों को देवता मानने वाले आदिकालीन बहुदेवतावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, प्रत्युत यह ऐसा विज्ञान है जो परम सत्य साक्षात श्री कृष्ण से आगे बढ़ने वाला सत्ता को निश्चित करता है। भगवान की सृष्टि के विस्तार के साथ ही ईश्वर की सत्ता और शक्ति का विस्तार होता है और इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा तथा सत्ता का प्रतिनिधित्व शुद्ध तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इस वृत्तांत से स्पष्ट हो जाता है कि ग्वाल बाल जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास गए थे, वे ठीक से प्रबुद्ध नहीं थे और वे कृष्ण तथा बलराम के पद को या उनके अंतरंग संगियों के पद को नहीं समझते थे। वस्तुतः यह लीला उन तथा कथित बनावटी ब्राह्मणों का पर्दाफाश करती है जो भगवान के आज्ञाकारी भक्त नहीं है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। पिछले रविवार हमने दशम स्कंद के इस प्रसंग को लिया। भगवान द्वारा याज्ञिक ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियों का उद्धार और आठ शिक्षाएं इस प्रसंग से जो हम सीखते हैं उसकी शुरुआत हमने की। पहली दो शिक्षाएं, भगवान श्री कृष्ण जब कुछ मांगते हैं अपने भक्तों से तो उनके स्वयं के लिए नहीं बल्कि उन भक्तों के लिए ही मांगते हैं। कृष्णा नेवर डिमांड्स फॉर हिमसेल्फ, ही डिमांड्स फॉर हिज ओन डिवोटीज। और दूसरी शिक्षा, जब ग्वाल बाल यहां इन ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने गए, कृष्ण बलराम द्वारा प्रेरित भेजे गए, आज का श्लोक वही है कि इन ब्राह्मणों से भिक्षा मांग रहे हैं और ब्राह्मण इतने व्यस्त उस यज्ञ में कि जो वो यज्ञ करने का उद्देश्य है, जो यज्ञ करने का प्रयोजन है कृष्ण और बलराम की संतुष्टि, और यहां साक्षात भगवान अपने सूत्रों को दूतों को भेज रहे हैं कि भिक्षा दीजिए, भोजन भोग दीजिए, इस प्रकार से मैं संतुष्ट होऊंगा, तो उसे तो भूल जाते हैं ये ब्राह्मण और केवल अपने विधि विधानों में लगे हुए हैं। तो दूसरी शिक्षा क्या थी? नेवर लूज फोकस ऑन द पर्पज ऑफ आर सर्विस। जैसे कि ब्राह्मण भूल चुके थे कि पर्पज क्या है यज्ञ करने का। और उसके साथ साथ हमने एक और शिक्षा जानने की कोशिश की कि एक तो हम जो सेवा कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने हेतु, उस सेवा का उद्देश्य जाने, और उसके साथ साथ जो अड़चनें आएंगी उस सेवा को करने में, विशेष रूप से कलयुग में, तो कली का क्या प्रयोजन है हमारे लिए, विशेष रूप से भक्तों के समुदाय में कलयुग का प्रयोजन क्या है? डिवाइड एंड रूल। और पिछले हफ्ते कुछ भारत का इतिहास हमने लिया था कि कैसे अंग्रेजों ने हम भारतीयों में बंटवारा किया, जैसे कि कली, मूर्तिमान कली का जो प्रयोजन होता है। बचपन में हमारे हिंदी के एक मास्टर जी थे, उन्होंने एक लघु कथा हमें सुनाई थी, यही डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल के संदर्भ में। तो एक गांव में दो सहेलियां बहुत प्रसिद्ध थी, और ये दो सहेलियां प्रसिद्ध थी कि बचपन से लेके उनकी युवावस्था तक एक बार भी इन दोनों सहेलियों के बीच में कोई अनबन नहीं हुई, कभी कोई मनमुटाव नहीं। पूरे गांव में यदि दोस्ती का उदाहरण किसी को देना होता तो इन दो सहेलियों का वो देते कि दोस्ती हो तो ऐसी हो, मैत्री हो तो ऐसी हो। तो एक शहरी व्यक्ति जब उस गांव में आता है और जब उसे पता लगता है कि यहां पर ये दो सहेलियां बहुत प्रसिद्ध हैं और अपनी मैत्री के विषय में प्रसिद्ध हैं, तो वो मूर्तिमान कली का रूप लेता है इनमें फूट डालने के लिए। तो ये शहरी व्यक्ति मूर्तिमान कली के समान है, कैसे फूट डालता है ये बताया गया इसमें। और हम भक्त उन दो सहेलियों की तरह हैं जिनका उद्देश्य है कि मैत्री से एक साथ रहें। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम प्रेम भाव से मैत्री से एक साथ रहकर भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की सेवा करें। परंतु मूर्तिमान कली हर समय किस ताक में रहता है कि कैसे मैं इन भक्तों के बीच में फूट डालूं। तो ये शहरी व्यक्ति करता क्या है, कुछ ज्यादा इसे नहीं करना पड़ता, मूर्तिमान कली को भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। तो वो इन दोनों सहेलियों को बुलाता है मिलने के लिए और फिर दोनों को थोड़ा अलग अलग खड़ा करता है और एक सहेली के कान में जाके कुछ खुसर पुसर करता है, कुछ नहीं बोलता, वो केवल नाटक करता है कुछ बोलने का, बोलता कुछ नहीं, फिर जाके दूसरी सहेली के कान में वैसे ही नाटक करता है बोलने का, बोलता कुछ नहीं, चला जाता है। अब ये सहेली दूसरी सहेली से पूछती, क्या बोला उसने? अब इसने आज तक और इस दिन भी अपने सहेली को कभी झूठ नहीं कहा था, तो इसने कहा कुछ नहीं। इसने क्या कहा? कुछ नहीं कहा उसने। और इसने इस सहेली को पूछा कि तुम्हारे कान में क्या है? कुछ नहीं। अब दोनों सच बोल रहे थे लेकिन मन में एक फूट आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं कहा, शहर से आया और मैंने उसका मुंह हिलते हुए देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? सो दैट वॉज द सीड of dissension इन दोनों के अंदर। और सच बात क्या थी? कुछ नहीं था। उस व्यक्ति ने वास्तविक रूप में दोनों के कानों में कुछ नहीं कहा लेकिन दोनों को क्या लगा कि मेरे बारे में कुछ बोला है, इसको लगा मेरे बारे में कुछ बोला, वो मेरे बारे में कुछ बोला है। होता नहीं भक्तों के समुदाय में? मूर्तिमान कली कहां बाहर से आता है, एक भक्त के कान में कुछ खुसर पुसर करके चला जाता है, दूसरे को लगता है मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, फिर इसके कान में बोलता है तो ये इसको लगता है मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, और वो तो चला गया और ये दोनों लड़ने लगते हैं फिर। तो हम यदि केवल इतना पहचान लें कि यदि मैं जो कि एक साधक भक्त हूं, यदि मेरा किसी दूसरे भक्त के साथ मन मुटाव हो रहा है, यदि हम इतना पहचान लें कि न तो मेरी न उसकी गलती, ये मूर्तिमान कली लड़वा रहा है हमको, तो इस्कॉन में हमारे 90% से ज्यादा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाएंगे। केवल हम इतना पहचान लें, दिस इज दी वर्क कॉन्स्पिरेसी ऑफ कली परसोनिफाइड, no one else। तो यहां जब हम ये दोनों प्रयोजन पहचान लेंगे, कलयुग का प्रयोजन और भगवान की भक्ति का प्रयोजन, ये दोनों पहचान लेंगे तब जाकर हमारी जो भक्ति की गाड़ी है वो सही पटरी पर सही तरीके से चलेगी। अब इसके पश्चात प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आज के श्लोक में ये ग्वाल बाल पहुंचे इन ब्राह्मणों के समक्ष और ये व्यस्त हैं ब्राह्मण अपने यज्ञिक क्रिया में, और ये ग्वाल बाल कहते हैं कि हम यहां पर कृष्ण बलराम द्वारा भेजे गए और इनको कहते हैं भूदेव। आपको याद है हमने इसके विषय में भी कहा था कि भगवान ने इन भूदेवों को सीख सिखाई और आगे चलकर नरदेव इंद्र को, तो यहां भूदेव कह रहे हैं। तो ये ब्राह्मण इन ग्वाल बालों को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। सेवा करना तो दूर, इनको संतुष्ट करना और इनके द्वारा भगवान कृष्ण बलराम को संतुष्ट करना तो दूर, क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित अवस्था में इनका अपमान कर दुत्कार कर इन्हें भगा देते हैं। तो तीसरा लेसन, तीसरी शिक्षा क्या है? कृष्णा रेगुलरली सेंड्स रिमाइंडर्स, जैसे कृष्ण ने इनको भेजा रिमाइंड करने के लिए कि भाई जो वास्तविक उद्देश्य है तुम्हारे यज्ञ करने का वो मैं हूं, मैं आ गया हूं। तो कृष्ण रिमाइंड करने के लिए भेजे, परंतु ये ग्वाल, ये जो याज्ञिक ब्राह्मण, ये इतना अपने उस विधि विधान, रीति रिवाज और रिचुअलिज्म में इतना ज्यादा मशगूल थे कि कृष्ण के रिमाइंडर को भी वो समझ नहीं सके। तो अब यदि हम देखें कि ये जो भगवान श्री कृष्ण रिमाइंडर भेजते रहते हैं, हम लोग भी अनुभव करते होंगे, हम भी जो संकीर्तन यज्ञ में लगे जैसे ब्राह्मण लगे थे आंगिरास यज्ञ में, हम कौन से यज्ञ में लगे? संकीर्तन यज्ञ में। और हम भी उद्देश्य भूल जाते हैं तो भगवान रिमाइंडर भेजते हैं, अलग अलग तरीके से रिमाइंडर भेजते हैं। हमारे अंदर वो बुद्धि होनी चाहिए उन रिमाइंडर को पहचानने की, और भगवान बुद्धि भी देते हैं, कई बार अहंकार के वजह से हम वो रिमाइंडर को पहचान नहीं पाते या अपनाना नहीं चाहते। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि ये जो रिमाइंडर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक है होते हैं इंडिकेटर्स और एक है वार्निंग। तो दो प्रकार के रिमाइंडर्स होते हैं भगवान द्वारा भेजे गए, इंडिकेटर्स और वार्निंग्स। जैसे रोड साइंस आपने देखे होंगे गाड़ी चलाते समय, तो रोड साइंस क्या होते हैं? कुछ रोड साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, कुछ रोड साइंस होते हैं जो आपको वार्न करते हैं, अपघाती क्षेत्र सावधान, वार्न करते हैं आपको। कई वो जेबरा क्रॉसिंग वगैरह वो इंडिकेट करते हैं कि ये जेबरा क्रॉसिंग है, यहां पर डिवाइडर है। जैसे अक्सर भारत में देखा जाता है कि सिग्नल, जब सिग्नल ऑरेंज है तो ऑरेंज क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेटर है ना वो, ऑरेंज इंडिकेट करता है कि गाड़ी धीरे कीजिए अभी, क्योंकि अभी लाल होने वाला है। और अक्सर हम लोग उल्टा करते हैं, जो इंडिकेशन का पर्पज है उसका उल्टा करते हैं कि जैसे ही ऑरेंज हुआ एक्सीलेटर ज्यादा दबाते हैं कि लाल होने से पहले निकल लूं, है ना। तो एक ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन डे टू डे लाइफ का। यदि हम अपने शरीर को देखें तो शरीर, ये जो संस्कृत का शब्द है इसका अर्थ है जो सरकता रहता है मृत्यु की ओर। कहां सरकता रहता है? मृत्यु की ओर जो सरकता रहे वो है शरीर। तो हम चाहे कितना भी यहां वहां सरकते रहें ये सोचते हुए कि मैं स्वास्थ्य की ओर सरक रहा हूं या मैं नित्य जीवन की ओर सरक रहा हूं, यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो स्वाभाविक रूप से ये शरीर जो है वो मृत्यु की ओर सरक रहा है। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे शरीर को, हम लें वृद्धावस्था, व्याधि, बीमारी, ये सारे इंडिकेटर्स क्या हैं? ऑरेंज लाइट है, ऑरेंज लाइट है कि अभी रेड सिग्नल आने वाला है, मतलब गाड़ी बंद होने वाली है। और कलयुग का दुर्भाग्य क्या है कि ऑरेंज लाइट के समय लोग ज्यादा भगाते हैं गाड़ी को, कि बुढ़ापे में ज्यादा जवानी चढ़ती है लोगों को। एक अमेरिका में सीरियल बहुत फेमस हुआ था, टीवी सीरियल। तो उसका प्लॉट ये था टीवी सीरियल का कि एक व्यक्ति, उसको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति। अब हर एपिसोड में दिखाया है कि उसको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके 6 महीने बाकी हैं। तो हर एपिसोड में दिखाया है कि कैसे वो, अब मरना तो है तो बस यहां वहां, कभी हवाई आइलैंड्स में एंजॉय कर रहा है, कभी स्विट्जरलैंड में एंजॉय कर रहा है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पर वो एंजॉय कर रहा है। वो इतना पॉपुलर हो गया सीरियल कि अब 6 महीने बाद प्लॉट के अनुसार उसको मरना है, तो पब्लिक डिमांड में बोले नहीं, हमको और चाहिए सीरियल। तो फिर स्टोरी में ट्विस्ट लाया उन्होंने कि कीमोथेरेपी से उसके और 6 महीने बढ़ गए। तो ये है आधुनिक समाज की वृत्ति कि मरते समय जितना भोग भोगना है भोग लो। और एक परीक्षित महाराज को जब नोटिस मिला तो उन्होंने तुरंत क्या किया, वो कहीं हवाई आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड यहां घूमने नहीं गए कि अरे भाई 7 दिन है तो चलो जो जो जगह नहीं देखी है वो देख लें पहले, जो जो भोग नहीं भोगा है वो भोग लेते, नहीं। तुरंत वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनना प्रारंभ किया। तो अब जैसे रामायण में हमने उदाहरण दिया था दशरथ महाराज का, कि महाराज दशरथ ने जब अपना पहला सफेद बाल देखा तुरंत उन्होंने इंडिकेशन ले लिया, टाइम आ गया मेरे सिंहासन से नीचे उतरने का। तो जो अपनी बुद्धि में बहुत प्रगत होते हैं वो ऐसे इंडिकेटर्स को समझ लेते हैं, इंडिकेटर्स और वार्निंग सबको समझ लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के विषय में हम जानते हैं प्रसिद्ध कथा उनकी, कि उनके पिता जो कि बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने भगवान बुद्ध जो समय राजकुमार थे, ही वॉज अ प्रिंस, सिद्धार्थ जो उनका नाम था, तो भविष्यवाणी हो गई थी, ज्योतिषी ने कह दिया था कि भाई आपका ये जो पुत्र है, ये जो राजकुमार है, ये तो बहुत बड़ा संत वैरागी बनने वाला है। तो कोई संत और बैरागी कैसे बनता है, सब इंडिकेटर्स को देखकर ना, वार्निंग्स और इंडिकेटर से वो असेसमेंट लगा लेता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना इसके अंदर, इस जंजाल में, इस संसार के जंजाल में मुझे नहीं पढ़ना। तो इंडिकेटर्स और वार्निंग से वो वैराग्य को अपना लेता है। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो जब भगवान बुद्ध, इनके पिता को पता लगा कि भाई ये मेरे राजकुमार, मेरे जो पुत्र है उसका भविष्य है, तो राजगद्दी को कौन संभालेगा, तो उन्होंने तुरंत ऐसी योजना बनाई कि ये जो सिद्धार्थ है मेरा बेटा, इसे कभी कोई इस संसार के दुख देखने को न मिले, क्योंकि यदि दुख को देख लेगा तो इसके अंदर संसार के प्रति वैराग्य आ जाए, इसको जितना भोग ताकि ये भोगों में ही रचा पचा रहे और कभी महल को छोड़कर ना जाए। और हम जानते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि गलती से अपने सारथी के साथ सिद्धार्थ महल के बाहर राज्य में निकल गए बहुत सालों बाद, और पहली दफा उन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को, कभी देखा ही नहीं था बूढ़े व्यक्ति। तो राज्य में इनके राजा ने इस प्रकार, इनके पिता ने इस प्रकार से प्रयोजन किया था कि कोई बूढ़ा भी है तो राजमहल में नहीं रहेगा, सब जवान सुंदर दिखने वाले। तो इसने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ही नहीं देखा, पहली दफा जब देखा ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी कौन है? तो सारथी ने कहा, भाई बूढ़ा व्यक्ति है, प्राणी कौन? हमारी तरह मनुष्य है, आप भी एक दिन बूढ़े होने वाले हैं ऐसे। तो सारथी ने पूरा सब एकदम विश्लेषण कर कर बताया। फिर आगे चलकर बीमार व्यक्ति को देखा, शव यात्रा देख ली उन्होंने। फिर जब पूछा कि ये क्या हो रहा, बोला कि भाई ये तो अंतिम डेस्टिनेशन है, सब मरने वाले। तो देखिए, पहली दफा ये चीजें देखकर राजकुमार सिद्धार्थ ने वैराग्य ले लिया। अब हम कितनी बार वैराग्य लेने के बाद भी देख देख कर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक दफा अपने जीवन में बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ देखा और वैराग्य। सोचो कितना स्ट्रांग उनका इंटेलिजेंस, कि इंडिकेटर्स को कैसे समझा उन्होंने। मुझे परसों ही एक एसएमएस आया, लॉर्ड बुद्धा ही लेफ्ट द पैलेस टू सर्च फॉर पीस एंड वी बुद्धूज वी आर सर्चिंग फॉर पैलेस एट द कॉस्ट ऑफ पीस। तो भगवान बुद्ध, उन्होंने इंडिकेटर्स देखा, समझ गए। तो हमको ये सब ऐसे जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, महाजन हैं, भगवान स्वयं हैं, वो तो इनसे सीखना चाहिए कि हम भी हमारे जीवन में सचेत रहकर, आंखें खुली रखकर भगवान द्वारा भेजे गए इंडिकेटर्स और वार्निंग्स को डिकोड करते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे भागवत के एक टीकाकार हुए श्रीधर स्वामी, तो उनके विषय में बताया गया है कि उनको भी जब वैराग्य लेना था, परंतु गृहस्थ थे वो, तो कुछ कारणों के वजह से नहीं ले पा रहे थे। अभी अभी शिशु जन्मा था और शिशु जन्म के पश्चात जो उनकी पत्नी थी वो, उनका देहांत हो गया। तो अभी सोच रहे थे कि कैसे मैं वैराग्य लूं। तो उन्होंने क्या देखा, उसी समय एक छिपकली ने, एक छोटी सी छिपकली, मतलब शिशुपाल, पाल बोलते हैं ना मराठी, तो पाल ने शिशुपाल को जन्म दिया। तो वो जो अभी अभी नवजात छिपकली शिशुपाल, पैदा होते ही उसने कीड़े को खा लिया, होते ही। जैसे मनुष्य में जब शिशु, उसका अन्न प्राशन बहुत समय बाद होता है ना, तो ये छिपकली ने तुरंत अपना जो भी उसका अन्न प्राशन, पैदा होते ही खा लिया कीड़े को। तो श्रीधर स्वामी को इंडिकेशन मिला कि यदि एक छिपकली के बच्चे को भगवान तुरंत पैदा होते ही उसका प्रयोजन करके दे देते हैं, तो मेरे बच्चे के लिए क्यों नहीं। अब इसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु ये उदाहरण है श्रीधर स्वामी का, कि उन्होंने ये इंडिकेशन लिया। मेरे ख्याल से यहां पर ही महाराष्ट्र के वो थे रामदास स्वामी, सावधान। कि वो जो लास्ट मोमेंट था अभी, कि वो अब जिनसे भी विवाह करने वाले थे, और पुरोहित ने जोर से अनाउंसमेंट कर दिया, शुभ मंगल, सावधान। तो अब देखिए, उस समय सही रूप में वो सावधान हो गए। उन्होंने जो पुरोहित बोल रहा था उसको फॉलो किया। अब कितनी बार ये, जब भी विवाह होते हैं, जब ये इतनी जोर से बोला जाता है, कितने लोग सावधान होते हैं। विशेष रूप से वर वधु तो दूसरी दुनिया में होते हैं। जैसे एक वर वधु, अब उनका विवाह हो रहा है, वो होता है ना जय मंगल, जय माल जय माल, तो माला पहनाते हैं एक दूसरे को। तो वो माला पहनाते हुए वो वधू बोल रही है वर को कि आज से हमारा जीवन आपकी बिना मैं नहीं, मेरे बिना आप नहीं डाल रही है। और वही वधू 4 साल बाद कहती है, कुत्ते आज तू नहीं या मैं नहीं। वर्डिंग्स वही हैं, शादी के समय था आपके बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना आप कुछ नहीं। तो यहां रामदास स्वामी सावधान हो गए, छोड़ के चले गए वहां से। तो हम देखें वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने उपदेश उपाख्यान में कथा कहते हैं, हमारे बुधवार के कार्यक्रम में हमने लिया था वो कथा, वाइज ओल्ड मंकी। तो उसने वो राज्य में देखा कि क्या वो भेड़ वो खाने के लिए जा रहे हैं अंदर राजा के किचन में, और जो रसोईया है उसको मारने के लिए जलता हुआ वो लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है। तुरंत ये बंदर कहता है हमें यहां से चला जाना चाहिए, इंडिकेशन देख लेता वो। क्यों? क्योंकि ये भेड़ बार बार किचन में जाएगा, वो रसोईया अगर एक बार वो आग पकड़ लिया ये भेड़ के ऊपर जो है ऊन है उसके ऊपर, और ये जो घोड़ों के अस्तबल में भागता है ये भेड़, तो जलता हुआ ये भेड़ यदि घोड़ों के अस्तबल में चला गया तो वहां पर घास है तो पूरा अस्तबल जल जाएगा और जितने घोड़े हैं राजा के वो सब मर जाएंगे, और यदि कोई घोड़े बच गए तो उनके लिए जो उपाय है वो ये है कि बंदरों के शरीर की चर्बी। तो कितने आगे की सोच रहा था ये बंदर, उसने क्या देखा? उसने खाली एक दृश्य देखा कि वो भेड़ रसोई में जा रहा है कुछ खाने के लिए, और वो रसोईया जलता हुआ वो लकड़ी फेंक रहा है। बस उसने कहा कि चलो यहां से, हमारे दिन भर गए। तो किसी बंदर को विश्वास नहीं हुआ, क्या तुम फालतू बात बोल रहे हो? और हुआ ऐसा ही, जैसे उसने आगे की सोची थी वैसा ही हुआ। अब देखिए जानवरों के अंदर ये प्रकृति के जो इंडिकेशंस और वार्निंग्स है उनको समझने की बहुत बुद्धि होती है, कई बार हम में नहीं होती, जानवरों में ज्यादा होती है। जैसे मुझे याद है एक हमारे ट्रेनिंग हुआ था आसाम में, तो वहां पर आसाम में बाढ़ बहुत आती है, पश्चिम बंगाल में आसाम में बाढ़ बहुत आती है। तो वहां पर एक व्यक्ति जो लोकल आसामी व्यक्ति, तो उसने मुझे बताया कि ये साल बाढ़ आने वाली है। तो मैंने कहा कैसे पता आपको बाढ़ आने वाली? तो उसने कहा वो चींटियों को मैं देख रहा हूं, पिछले तीन तीन महीने से चींटियों को देख रहा हूं। मैंने कहा चींटियों को देख के कैसे पता लगा लिया आपने? तो उसने कहा कि ये चींटियां जो हैं पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष ज्यादा इकट्ठा करके रख रही हैं। तो देखो उन्होंने कहां से इंडिकेशन लिया, और फिर मैंने पता लगाया आगे चल के, तो उस वर्ष बाढ़ आई, चींटियों को इंडिकेशन मिल गया बाढ़ आने वाली है। जैसे एक एक और ऑब्जर्वेशन आप यदि देखो प्रकृति में, ये जो पक्षी घोंसले बनाते हैं पेड़ के ऊपर, तो यदि पक्षी ने एकदम ट्री टॉप के ऊपर घोंसला बनाया, पेड़ के एकदम ऊपरी भाग में घोंसला बनाया, तो उसका इंडिकेशन क्या है? किसानों को इस प्रकार से इंडिकेशन मिलता है। तो कैसे वर्षा कितनी होगी वो पक्षियों के घोंसलों से पता लगा लेते। तो यदि सबसे ऊपर पक्षी ने घोंसला बनाया, मतलब इस वर्ष वर्षा जो है कम होने वाली है। पेड़ के बीच में घोंसला बनाया, मतलब मॉडरेट रेनफॉल। और लोअर ब्रांचेस में घोंसला बनाया है पक्षी ने, मतलब हैवी रेनफॉल होने वाला है, इसलिए पक्षी ने पेड़ के निचले भाग में घोंसला बनाया। ये टेक्नोलॉजी। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि इंडिकेशंस और वार्निंग से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सी समस्याओं का समाधान हम केवल कृष्ण द्वारा भेजे गए रिमाइंडर्स, इंडिकेटर्स और वार्निंग से कर सकते हैं। अब हमने शरीर का उदाहरण लिया था कि हमारे शरीर में कितने ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स और वार्निंग्स हैं। जैसे अभी मैंने खांसा, तुरंत कुछ यहां पे अटक रहा था, शरीर ने इंडिकेट किया खांसो। हम छींकते हैं, शरीर का इंडिकेशन होता है। हम उबासी जमाई लेते हैं, शरीर का इंडिकेशन है क्लास शुरू हो गई है। आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं, महाप्रसाद ये गाना शुरू हो गया। अब देखो, शरीर के अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाता है, तुरंत हमको कुछ अनईजी लगता है ना। किडनी स्टोन क्या है? कुछ फॉरेन एलिमेंट जो किडनी के अंदर नहीं होना चाहिए, हाँ, वो आ गया। तो अब यदि हम इसको लें कि हमारे शरीर के अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट आता है तो तुरंत हम उसको पहचान कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ आंख में चला गया, कुछ फॉरेन एलिमेंट चला गया ना, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। एक तो ग्रॉस लेवल पर फॉरेन एलिमेंट होता है हमारे शरीर में, और एक सटल सूक्ष्म लेवल पर भी फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं। क्या हम उनको पहचानते हैं? क्या है फॉरेन एलिमेंट सूक्ष्म स्तर पर? षडरिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये हमारे परिवार वाले नहीं है, ये फॉरेनर्स हैं, सब फॉरेन एलिमेंट हैं। परंतु हम लोग ने किया क्या है कि ऐसे फॉरेनर्स को हमने न्योता देके इनवाइट कर खिला पिला कर रखा है अंदर। जबकि जैसे किडनी स्टोन अगर एक फॉरेन एलिमेंट है, उसको क्या करता है एक डॉक्टर? ये न प्रकारेण उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है अलग अलग तरीके से। तो वैसे ही ये जो सूक्ष्म स्तर पर फॉरेन एलिमेंट्स हमारे मन में, जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, तो भक्ति का प्रोसेस क्या है कि हम ये इंडिकेशंस को जाने कि ये फॉरेन एलिमेंट है और इसको बाहर निकालें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है प्रोसेस बाहर निकालने का। तो अब ये जो थर्ड लेसन भगवान सिखा रहे हैं इस प्रसंग के द्वारा, दैट ही सेंड्स रिमाइंडर्स, तो इसका एक सब पॉइंट या सब लेसन ये है, व्हेनेवर कृष्णा सेंड्स रिमाइंडर्स, ही सेंड्स रिमाइंडर्स एट द टाइम व्हेन वी नीडेड द मोस्ट। ये बहुत जरूरी है समझना। इसी प्रसंग को यदि हम लें तो भगवान ने ग्वाल बालों को भेजा कब भिक्षा मांगने के लिए? उस समय भेजा जब इनका जो यज्ञ का जो अंतिम चरण चल रहा था, जब भगवान विष्णु को आहुति देना था, तो भगवान रुके कि पहले नहीं भेजे उनको, कि जब एक्चुअली उनको सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी कृपा की, तब भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा। तो ये जो एक लेसन है, कृष्णा व्हेन ही सेंड्स रिमाइंडर्स ही डज इट विथ परफेक्ट टाइमिंग। उनका टाइमिंग एकदम परफेक्ट होता है। कुछ उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे नलकुवर मणिग्रीव, अब नलकुवर मणिग्रीव कल से दामोदर का महीना चालू हो रहा है, तो नलकुवर और मणिग्रीव ये जो कुबेर के पुत्र जो कि कैलाश के उपवन में मंदाकिनी गंगा में नग्न स्थान कर रहे, और वो भी उन स्त्रियों के साथ, तो नारद मुनि का टाइमिंग देखो आने का, नारद मुनि का टाइमिंग कितना परफेक्ट था कि वो एकदम परफेक्ट टाइम पर पहुंचे जहां पर अब नलकुवर और मणिग्रीव को नारद मुनि ने अपनी कृपा दी उस श्राप के द्वारा जो कि तथाकथित श्राप था। तो इस प्रसंग में नारद मुनि का वहां पर आना, राधा गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में इस प्रसंग को सुनाते हुए बोल रहे थे कि नलकुवर और मणिग्रीव सोच रहे थे नारद मुनि को देखते हुए, ये जगह है तुम्हारे आने की और ये समय है, साधु सन्यासियों को ऐसी जगह पे आना चाहिए। तो नलकुवर और मणिग्रीव को लगा कि नारद मुनि का एकदम गलत टाइमिंग आने का। ऐसा नहीं था कि वो नारद मुनि को जानते नहीं थे, अरे वो शिवजी के अनुचर, तो वो कोई राक्षस नहीं थे, वो लोग कुबेर के पुत्र हैं भाई, वो तो कौन सी कैटेगरी में है, देवताओं की कैटेगरी में, डिवोटी कैटेगरी में वो। लेकिन राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि नलकुवर और मणिग्रीव मन में सोच रहे हैं कि ये क्या गलत टाइमिंग से आए। कई बार हमको भी लगता है कोई डिवोटी ऐसे टाइम पे पहुंच जाता है हमारे पास जब पूरी प्रसाद की प्लेट रेडी है खाने के लिए अभी, या और कुछ हम कर रहे हो। एक बंबई में एक स्टूडेंट बोल रहा था, प्रभु जी मैंने वो डिवोटी को नाइट क्लब में देखा, तो हमने पूछा तू क्या कर रहा था। जैसे एक छोटा बच्चा एक बार नाइट क्लब में चला गया गलती से, तो उसकी मदर बहुत परेशान, बेटा तुमने ऐसा तो कुछ नहीं देखा जो तुझे देखना नहीं चाहिए था ना। हाँ तो क्या, पिताजी को तो यहां पर नलकुवर और मणिग्रीव वो सोच रहे हैं कि ये नारद मुनि का इतना गलत टाइमिंग। लेकिन यही नलकुवर और मणिग्रीव आगे चलकर जब भगवान श्री दामोदर के द्वारा इनका उद्धार होता है, तब ये नारद मुनि को धन्यवाद देते हुए श्लोकों में क्या कहते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग था नारद मुनि का आना। तो होता क्या है, कई बार भगवान का टाइमिंग हम नहीं समझ पाते, इसलिए कहते ना कृष्णा वेयर्स अ डिफरेंट रिस्ट वॉच विच इज नॉट सेट अकॉर्डिंग टू अवर रिस्ट वॉच। हम लोग अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान का भी सेम टाइम होना चाहिए, नहीं, भगवान का टाइम कैलकुलेशन अलग रहता है। तो जिस समय भगवान हमें कुछ इंडिकेशन भेज रहे हैं, हमें लग रहा होगा कि ये गलत टाइमिंग है, जैसे नलकुवर मणिग्रीव को लगा। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को देखो, नारद मुनि का टाइमिंग कितना परफेक्ट रहा है हर एक एग्जाम्पल में। हम देखो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, दूसरा एग्जाम्पल ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, और वो अपनी माता सुनीति के पास गए। उनकी माता सुनीति ने उनको वन में जाने के लिए कहा, विष्णु की भक्ति, विष्णु को ढूंढो वहां पर वन में। अब ये वन के रास्ते में, तो नारद मुनि का वापस परफेक्ट टाइमिंग देखिए, वन में पहुंचने से पहले नारद मुनि ध्रुव महाराज को पकड़ लेते और उनको वो मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उनको पद्धति बताते हैं कि कैसे योग साधना करनी है तुम्हें। तो ध्रुव महाराज के लिए नारद मुनि का आना परफेक्ट टाइमिंग। कंस के महल में भी नारद मुनि का टाइमिंग कितना परफेक्ट था। जब कंस इत्मीनान से बैठा था कि मेरे को तो आठवां पुत्र मारने वाला है ना, बाकी पुत्रों से क्या मेरे को डर है। नारद मुनि आते हैं, कहते हैं मूर्ख, और वो कमल का पुष्प दिखाते, बता कौन सी पहली पंखुड़ी है, कौन सी आठवीं पंखुड़ी, बता। कंस चक्कर में खा जाते हैं कि कमल में कौन सी पहली पंखुड़ी, कौन सी आठवीं पंखुड़ी। तो नारद मुनि ने इंडिकेट किया क्या कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन जो है थोड़ा जल्दी कराओ, क्योंकि तुमको जल्दी मरवाना है मुझे। तो कई बार लोग बोलते हैं ये नारद जो है कलह प्रिय है, नहीं, उनका टाइमिंग परफेक्ट रहता है भगवान की कृपा को देने के लिए। जैसे हिरण्यकशिपु के विषय में बताया गया है नरसिंह पुराण में कि हिरण्यकशिपु जब राज्य कर रहा था तो अब वो तपस्या करने से पहले का प्रसंग है। तो नारद मुनि आ गए हिरण्यकशिपु के महल में, और नारद मुनि हर समय भगवान का कीर्तन करते रहते, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम, हर समय राधिका रमण उनका नाम चलता रहता है। तो नारद मुनि वीणा लेकर कीर्तन करते हुए हिरण्यकशिपु के महल में, तो हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो जाता है, सबसे पहले नारद मुनि से कहता है कि ये कीर्तन बंद करो, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु का कीर्तन बंद करो। नारद मुनि ने कहा कि ये तो बंद नहीं होने वाला, कर ले जो करना। तो हिरण्यकशिपु के पास एक बहुत विशेष तलवार हुआ करती थी जिसका नाम था चंद्रहास, और ये तलवार ऐसी थी कि हिरण्यकशिपु तलवार को मयान से निकालकर किसी के ऊपर छोड़ता तो तलवार उसको दो भाग में काट कर अपने आप को कहीं सरोवर में धोकर वापस मयान में आ जाती। ऐसी जादुई तलवार हिरण्यकशिपु के पास थी, चंद्रहास। तो उसने वो तलवार निकाल ली। ये तलवार सभी जानते हैं मेरी इस तलवार के विषय में, ये कीर्तन बंद करो नहीं तो मैं इसे अभी छोड़ता हूं। नारद मुनि ने कहा देख लो छोड़कर, ये नारद मुनि का विश्वास श्रद्धा। तो उसने वो चंद्रहास तलवार छोड़ी, और वो चंद्रहास तलवार नारद मुनि के शरीर से भेदते हुए गई, परंतु नारद मुनि को कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि नारद मुनि को कुछ हुआ नहीं तो तलवार को अपने आप को कहीं धोना नहीं था, तो ऐसे ही मयान में चली गई। टारगेट फेल्ड। जब हिरण्यकशिपु ने देखा तो वो अचंभे में चला गया, पहली दफा ये मेरी तलवार फेल हुई है। तब हिरण्यकशिपु थोड़ा नम्र हो गया और उसने पूछा कि बताओ ये ऐसा शरीर कहां से मिला तुमको। तो नारद मुनि ने कहा इस कीर्तन से, ये कीर्तन से मिला ऐसा शरीर चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं, शरीर तो चाहिए लेकिन कीर्तन नहीं करूंगा मैं। तब फिर जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि दूसरा सब्स्टिट्यूट कुछ है, तब फिर उसको ये तप करने के लिए कहा नारद मुनि ने। तो नारद मुनि द्वारा प्रेरित हिरण्यकशिपु फिर वो ऐसा शरीर प्राप्त करने के लिए वो गया मंदार पर्वत पर तप करने के लिए, और फिर आगे की कथा हम जानते हैं। तो नारद मुनि का टाइमिंग देखो कितना परफेक्ट होता है। श्रील प्रभुपाद के विषय में हम देखें, श्रील प्रभुपाद का अमेरिका जाना, अब प्रभुपाद को अमेरिका जाने के लिए उनके गुरु महाराज ने बहुत पहले कह चुके थे, वो 1922 में फर्स्ट टाइम जब प्रभुपाद उनके गुरु महाराज से मिले, तो 1922 में जो आदेश दिया उसको प्रभुपाद ने पूरा कब किया, 1965। तो श्याम सुंदर प्रभु, प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य, वो बता रहे थे एक संडे फीस क्लास में बॉम्बे में कि प्रभुपाद का अमेरिका में आने का जो टाइमिंग था कितना परफेक्ट था। यदि प्रभुपाद थोड़ा पहले आते 65 के या थोड़ा बाद में आते तो जो वो हासिल किए नहीं कर पाते। तो उन्होंने पूरा 1965 अमेरिका की रूपरेखा दी उन्होंने, श्याम सुंदर प्रभु ने, कि काउंटर कल्चर चल रहा था, हिप्पी कल्चर चल रहा था। हिप्पी कल्चर क्या था कि जितने नवयुवक थे अपने घर बार छोड़कर त्रस्त हो गए थे, हम चाहे जितना भी ऐश्वर्यशाली घर हो हमें नहीं रहना ऐसे घरों, वहां उसको छोड़कर वो लोग एक जंगलों में रहते थे, वो लोग हिप्पी जैसे कोई विरक्त रहता, और थे ये लोग सब युवावस्था में। तो श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे कि ये ऐसे स्टेज में थे, वियतनाम वॉर चल रहा था, उससे परेशान, सरकार से परेशान, अपने परिवार से परेशान, तो जाएं कहां। और उस टाइम भगवान ने प्रभुपाद को भेजा, टाइमिंग भगवान का देखो, कि जब प्रभुपाद उस टाइम पर पहुंचे तो ये हम आजकल वो जो हरे कृष्ण एक्सप्लोजन पढ़ते हैं प्रसादम के समय, परफेक्ट टाइमिंग था प्रभुपाद का वहां पहुंचना। क्योंकि एक और चीज श्याम सुंदर प्रभु कहे कि सरकार से परेशान जो वियतनाम वॉर चल रहा था, जबरदस्ती नवयुवकों को वो भेज रहे थे वॉर के लिए, सरकार से परेशान और उनका जो इतना इंद्रिय भोग का जीवन अमेरिका का, उससे परेशान, और इसके वजह से, इन दो कारणों के वजह से वो हिप्पी उस समय ईस्टर्न फिलॉसफी के प्रति बहुत इंटरेस्ट हो गए उनका, मतलब वैदिक फिलॉसफी के प्रति। और हयग्रीव प्रभु, कीर्तनानंद महाराज, ये जो आगे चल के प्रभुपाद के शिष्य बने, श्रील प्रभुपाद जिस जलदूत से आए अमेरिका में, उसी जलदूत से ये बिना प्रभुपाद को मिले इंडिया आए थे धर्म को जानने के लिए, उसी जलदूत से। आगे चल के जब प्रभुपाद ने इनको पूछा, हयग्रीव प्रभु कुछ ही समय में वापस इंडिया से आ गए, क्योंकि उनको जो अपेक्षा थी वो मिला नहीं उनको यहां पे। तो न्यूयॉर्क के स्ट्रीट पे वो देखते हैं प्रभुपाद को सामने से चलते हुए आते हुए, तो हयग्रीव प्रभु क्योंकि अभी भी इंडिया से आए थे, इतने इंडियंस को देखा था, तो प्रभुपाद के एकदम सामने आके पूछते हैं, आर यू फ्रॉम इंडिया। तो प्रभुपाद पहली दफा कोई उनको पूछ रहा है आर यू फ्रॉम इंडिया, प्रभुपाद ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा यस आई एम फ्रॉम इंडिया, डू यू नो इंडिया, तो उन्होंने कहा यस आई रिसेंटली बीन टू इंडिया। प्रभुपाद ने पूछा वेयर, कैलकटा, जहां से प्रभुपाद आए थे कैलकटा। और आप जानते हैं कि ये हयग्रीव प्रभु इंडिया से कौन सी पेंटिंग लेकर आए, इनको कुछ पता नहीं कि यहां का धर्म क्या है। ये जो षडभुज चैतन्य महाप्रभु की पेंटिंग है वो पेंटिंग लेकर आए, कुछ पता नहीं कि कौन है ये छह हाथ षडभुज क्या है। और 26 सेकेंड एवेन्यू में जब प्रभुपाद ने शुरू किया वो केंद्र, तो हयग्रीव प्रभु ने सोचा कि प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए मैं इंडिया से कुछ लाया हूं तो वो मैं लगाता हूं दीवार पर। जब प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद इतना प्रसन्न हो गए और प्रभुपाद ने पूछा कि ये कहां से लाए, तो उन्होंने कहा मैं कलकत्ता से लाया, इंडिया से लाया। तो प्रभुपाद ने पूछा तुम जानते हो ये कौन है? मुझे कुछ नहीं पता कौन है ये, मुझे पेंटिंग अच्छी लगी मैं लेकर आया। फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये जो षडभुज छह हाथ हैं, दो हाथ रामचंद्र जी के हैं, दो हाथ कृष्ण के हैं और दो हाथ चैतन्य महाप्रभु के हैं। और प्रभुपाद ने हयग्रीव प्रभु से कहा दिस इज नॉट बाय चांस दैट यू पिक्ड अप ओनली दिस पेंटिंग। अब इंडिया में धर्म की पेंटिंग्स तो कितनी हो सकती है, 33 करोड़ देवता भाई, आप कई बार रास्ते में देखते होंगे वो लोग सब मार्केट लेके फोटोज का बैठते हैं, कितने सारे ये देवता वो देवता। तो उनमें से इन्होंने षडभुज चैतन्य महाप्रभु की पेंटिंग लेकर आए। प्रभुपाद ने कहा इट इज नॉट बाय चांस यू वर ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू चैतन्य महाप्रभु इन योर प्रीवियस लाइफ एंड चैतन्य महाप्रभु हैड ऑलरेडी स्पॉटेड यू। तो प्रभुपाद का टाइमिंग, श्याम सुंदर प्रभु अपने प्रवचन में बता रहे थे, इतना परफेक्ट टाइमिंग था प्रभुपाद का अमेरिका आना, ये सब के वजह से। प्रभुपाद ने जब देखा कि ये लोग सब ये ड्रग कल्चर में हैं, देखो प्रभुपाद ने उसके अंदर भी क्या देखा कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं वहां पे। प्रभुपाद ने देखा कि ड्रग्स क्यों लेता है कोई व्यक्ति, कि उसे किसी दूसरे लोक में जाने की एक इच्छा होती है। जब कोई नशा करता है क्यों, दूसरे लोक में पहुंच जाता है ना नशा करने के बाद, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो दूसरे लोक में। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने देखा कि ये जो ड्रग्स ले रहे हैं, ये ड्रग्स लेने का इनका उद्देश्य क्या है, कि इनको किसी दूसरे लोक में जाने की ये इच्छा हो रही है, तो मुझे खाली वो ड्रग्स को चेंज करना है हरे कृष्ण से, और जो इनकी धारणा है दूसरे लोक की उसको गोलोक वृंदावन में परिणित करना बस। तो प्रभुपाद ने देखो उसके अंदर कितना पॉजिटिविटी देखा। हम किसी नशीड़ी को देखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, तो प्रभुपाद का टाइमिंग एकदम परफेक्ट। जैसे नारद मुनि का एक और परफेक्ट टाइमिंग था हर्यश्वस को ब्रह्मचारी बनाने का, जो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, जो कि अब दक्ष प्रजापति के महल से निकलकर नारायण सरस वहां पर तपस्या करने गए, तो नारद मुनि वेट कर रहे थे कि कब ये 10,000 निकलेंगे घर से। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो नारद मुनि वेट कर रहे थे कि कब ये 10,000 दक्ष प्रजापति के पुत्र निकलेंगे बाहर महलों के ऐशो आराम से, क्योंकि इनको मुझे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कराना है। तो वहां पर हम जानते हैं 6 स्कंद में इसका वर्णन है कि हर्यश्वस को कैसे प्रीचिंग किया। वैसे श्रील प्रभुपाद ऐसे टाइम पर पहुंचे जैसे नारद मुनि हर्यश्वस के पास पहुंचे। तो ये हिप्पी भी अपने घर से निकले हुए थे, जैसे दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र निकले हुए थे घर से ना, वो लोग गए नारायण सरस, ये लोग यहां वहां भटक रहे थे नशा करते हुए, और प्रभुपाद नारद मुनि के जैसे पहुंच गए और प्रभुपाद ने इन सब को सन्यासी ब्रह्मचारी क्या क्या बना दिया। तो कैसे नारद मुनि का टाइमिंग, प्रभुपाद का टाइमिंग। अब ये हुआ नारद मुनि और प्रभुपाद, इन्होंने कैसे परफेक्ट टाइमिंग से इनको भक्ति में लगाया। अब एक और चीज इसमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि माया देवी का भी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होता है। हम लोग इत्मीनान से बैठ गए होंगे कि हाँ मेरा परफेक्ट टाइम आएगा जब कोई नारद मुनि जैसा मेरे जीवन में आके मुझे भी। माया देवी भी परफेक्ट टाइमिंग से ही आती है। उदाहरण अजामिल, अजामिल का उदाहरण सबसे पहले। अब देखो अजामिल वो बेचारा रोज जाता था वो उस जंगल से, रोज जाकर वो यज्ञ की सामग्री अपने गुरु के लिए पूजा पाठ के लिए लेके आता। माया देवी ने क्या टाइमिंग देखा, दे वहां से गुजर रहा है, परफेक्ट टाइमिंग में वो सीन क्रिएट किया। मतलब अगर वो जो भी वो वैश्य और वो शूद्र अगर वो थोड़ा जल्दी या थोड़ा बाद में आते तो अजामिल की कथा कुछ और ही होती, होती नहीं। हाँ? हमको इतना टॉपिक नहीं मिलता संडे फीस्ट के लिए। कितना हम लोग आठ आठ सेशंस लिए, तो आठ आठ सेशंस की शुरुआत कहां से हुई, वो परफेक्ट टाइमिंग माया देवी का, वहां से हुआ ना। नहीं तो दो लाइन में अजामिल, अजामिल भी एक ब्राह्मण था, पूजा पाठ करता था, हाँ उसके बच्चे बच्चे हुए, 10 दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, हाँ खत्म। तो अजामिल के लिए माया देवी का टाइमिंग, सौबरी मुनि एक और उदाहरण। अब देखो कहां वो जाकर तपस्या कर रहे हैं, जमुना के अंदर, वो भी ब्रजधाम में, जमुना के अंदर जाकर तपस्या कर रहे हैं, और ऐसी कठोर तपस्या की श्वास लेना बंद कर दिया। लेकिन माया देवी का परफेक्ट टाइमिंग, जब उन्होंने गरुड़ जी का अपराध किया उसके बाद उन मछलियों को भेजा। अब देखो माया देवी जमुना के नीचे सौबरी मुनि को प्रलोभित करने के लिए किसको भेज सकती थी, बहुत मुश्किल था ना किसी को भेजना। तो माया देवी ने मछलियों को देखा, इनको यूज करती, टाइमिंग परफेक्ट, ऑब्जेक्ट परफेक्ट। सौबरी मुनि बाहर निकले, 50 मंदहाता राजा की बेटियों के साथ शादी कर ली। नवम स्कंद में उदाहरण है महाराज ययाति का। अब ये भी एक रोमांचक कथा है नवे स्कंद में, कि महाराज वृषभ पर्व की पुत्री जिसका नाम था शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, दोनों हमने उदाहरण दिया था ना पक्की सहेली, एकदम पक्की सहेली दोनों, एक क्षत्राणी और एक ब्राह्मणी। शुक्राचार्य की जो पुत्री देवयानी वो ब्राह्मणी थी और महाराज वृषभ पर्व की पुत्री शर्मिष्ठा क्षत्राणी। तो सरोवर में स्नान करने के लिए अपने सखियों के साथ गई और उस समय शिवजी उमा देवी के साथ घूम रहे थे। तुरंत ये सरोवर से बाहर निकली दौड़ते हुए अपने कपड़े पहनने के लिए, तो हुआ क्या कि शर्मिष्ठा जो कि राजा की बेटी थी उसने देवयानी के कपड़े गलती से पहन लिए, गलती से। देवयानी क्रोधित, तेरी ये मजाल, नीची जाति वाली, मैं ब्राह्मणी हूं तू क्षत्रिय नीची जाति वाली, तूने मेरे कपड़े पहन लिए। झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ, अब ये क्षत्राणी थी हाथापाई चालू हो गई। अब देवयानी वो तो एक ब्राह्मण की पुत्री, तो शारीरिक बल तो इतना था नहीं उसके पास, और ये क्षत्रिय की पुत्री कौन, शर्मिष्ठा, तो इसने देवयानी को उठाया और एक कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। अब कुएं में गिरी हुई ये देवयानी, ध्यान में रहिए अब परफेक्ट टाइमिंग देखो ययाति महाराज के आने का, मतलब माया देवी का परफेक्ट टाइमिंग उनको भेजने का। वो महाराज ययाति घूम रहे हैं शिकार करते हो, उनको उसी टाइम प्यास लगी, मतलब साथ में अगर एक बिस्लेरी बोतल लेके चलते तो जो आगे उनका हाल हुआ नहीं होता, लेकिन साथ में कोई बोतल वोटल लेके चले नहीं पानी के, तो प्यास लगी और फिर वहां पे सामने ही देखा कुआं, तो कुएं में से पानी लेने के लिए हाथ जब अंदर डाला तो देखा इधर तो एक युवती है सुंदर, वो भी तो वो होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, वो हो गया। अरे ये तो भगवान की योजना है। तो उसको क्या लग रहा था कि वो बोलते ना रब ने बना दी जोड़ी, ये तो रब ने बनाई है हमारी जोड़ी। तो हुआ क्या, महाराज ययाति ने उसको तो कुएं से निकाला लेकिन खुद चले गए एक और कुएं में। तो अब महाराज ययाति और देवयानी उनका इश्क चालू हुआ और विवाह हो गया। तो अब देखो देवयानी का विवाह हो गया इतने बड़े महाराज ययाति के साथ, लेकिन फिर भी वो शर्मिष्ठा ने जो किया उसको छोड़ूंगी नहीं। तो जाकर अपने पिता शुक्राचार्य को कहा कि ये सब किया शर्मिष्ठा ने। अब शुक्राचार्य वो किसके किंगडम के आचार्य थे, इसी वृषपर्व के। तो शुक्राचार्य गए महाराज वृषपर्व को कहा, भाई मेरी बेटी क्रोधित है तेरी बेटी के साथ, तो उसका कुछ कंडीशन है मान ले, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे। तो ये डर गए अभी, क्या कंडीशन है। अब इसने भी देखो क्या कंडीशन रखा, देवयानी ने दंड के रूप में कहा कि ये शर्मिष्ठा मेरी मेड सर्वेंट बननी चाहिए, दासी। तो शर्मिष्ठा को दासी बनाया इसने। अब शादी इसकी किससे, महाराज ययाति से हो गई, और दासी कौन है, शर्मिष्ठा। जनरली होना क्या चाहिए था कि शर्मिष्ठा का विवाह ययाति से होना चाहिए, दोनों क्षत्रिय हैं। लेकिन यहां होता ना, फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि तीर कहीं चलता है निशाना कहीं चलता है, तो यहां पर इसका विवाह हो गया ब्राह्मणी के साथ और क्षत्राणी दासी बन गई। ये भागवत की कथा सुना रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि किसी आपको लग रहा होगा किसी रेलवे स्टेशन के उपन्यास से सुना रहा हूं। ये सब सुखदेव गोस्वामी ने, और वो भी नवम स्कंद, इतने परीक्षित महाराज के दिनों के बाद ये मसाला सुना रहे हैं। तो अब यहां पर शर्मिष्ठा वो दासी बन गई देवयानी की। तो अब हुआ क्या कि स्वाभाविक रूप से महाराज ययाति जो कि क्षत्रिय थे शर्मिष्ठा के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि वो क्षत्राणी। तो जब वो शर्मिष्ठा के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने जब शर्मिष्ठा के साथ संग कर दिया, तो अब देवयानी और क्रोधित, ये क्या चल रहा है। तो सब स्कैंडल्स पे स्कैंडल चल रहा है इधर, स्कैंडल पुराण। तो अब देवयानी फिर जाती है शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य अब श्राप दे देते हैं ययाति को कि तुम्हारी ये जो युवावस्था है तुम बूढ़े हो जाओ अभी तुरंत तुरंत। महाराज ययाति जो अपने युवावस्था में थे एकदम ऑरेंज लाइट से रेड लाइट पूरा पूरा वृद्ध हो गए। और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने क्षमा मांगी, तो शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है अपने किसी एक पुत्र से उनकी जवानी मांग लो। सोचो कि कोई पिता जाके अपने पुत्र से क्या मांग रहा है कि तेरी जवानी मुझको दे, क्यों जानते हैं क्यों। तो सबने मना कर दिया, पिताजी क्या आप भी तो सबने मना कर दिया, भाई आपने तो जो भोगना था भोग लिया, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं अभी। तो खाली उनके जो एक पुत्र पुरु वो राजी हुए और उन्होंने अपनी जवानी महाराज ययाति को दी। तो इसमें देखिए जो इतने पेचीदी ये कथा है इसके अंदर क्या था, टर्निंग पॉइंट क्या था, वो परफेक्ट टाइमिंग माया देवी का, कि ऐसे परफेक्ट टाइमिंग पर महाराज ययाति को उनको प्यास लगी या लगवाई गई और फिर वो जो भी कुएं के साथ हुआ। तो ये माया देवी का परफेक्ट टाइमिंग, इसलिए कहते हैं ना कि समय और समझ ये केवल भाग्यवान व्यक्तियों को साथ साथ मिलती है। क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं आती, समझ नहीं होती, और जब तक समझ आ जाती है समय निकल जाता है। तो ये समय और समझ एक साथ, इसका परफेक्ट टाइमिंग होना, ये बहुत जिन्होंने पुण्य कर्म किए उनको मिलता है, ध्यान में रखना। इसलिए भगवान इंडिकेशंस भेजते रहते हैं, समय पर हमें समझ आ जाए ऐसे इंडिकेशंस भेजते रहते हैं। हम लोग केवल उस समय दूसरे चीजों में व्यस्त रहते हैं और वो इंडिकेटर्स और वार्निंग्स को नहीं समझ पाते। तो श्रील प्रभुपाद ने एक वर्ड यूज किया अपने तात्पर्यों में, एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब है याददाश्त खो जाना। तो जिस व्यक्ति को एमनीजिया हुआ है या उसकी याददाश्त वो खो बैठा है, तो कई बार होता क्या है कि अलग अलग तरीकों से जो उसके सगे संबंधी होते हैं उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए जो जो वो किया करता था, जिस जिस चीजों में वो रुचि लिया करता था, उसको उसके सामने प्रस्तुत करते रहते। तो यदि हम हमारी स्थिति को देखें, हमारी स्थिति क्या है, हम सब भगवान को भूल चुके हैं। तो हम लोग कौन से बीमारी से पीड़ित हैं, एमनीजिया। तो कृष्ण का मेमोरी रिकवरी प्लान अगर हम कहें, कृष्ण का मेमोरी, हमारे मेमोरी रिकवरी प्लान क्या किया उन्होंने, सबसे पहले तो भगवान आ गए इस मृत्यु लोक में आके, उन्होंने लीलाएं की, क्योंकि याद दिलाने के लिए कि भाई तुम भी इसी लीला के भाग थे एक दिन। तो भगवान आकर लीला करते हैं हमको याद दिलाने के लिए। फिर जब हमको लीला समझ में नहीं आती तो भगवान अपने धाम छोड़कर चले जाते हैं कि धाम में जा जाकर आप उसको याद करते रहो मेरी लीलाओं को, क्योंकि जहां पर भी लीला करते हो धाम बन जाता है। फिर धाम में जाते हैं तो हमको भगवान की लीला तो दिखाई देती नहीं, क्या दिखाई देता है, बस जैसे बाकी जगह दिखाई देती। इसलिए भगवान ने अपने धाम में अपनी मूर्तियां प्रस्थापित करवाई कि मेरी मूर्तियों के द्वारा मेरे धाम में मेरी लीलाओं को समझो। तो कितनी चीजें हो गई, पास्ट टाइम्स, देन पिलग्रिमेज होली प्लेसेस, देन डीटीज विद इन दोज होली प्लेसेस। और फिर भी हमको भगवान के अर्च विग्रह का क्या महत्व है नहीं समझ में आता, तो भगवान ने अपने ग्रंथ भेजे कि ग्रंथों के द्वारा समझो मेरे अर्च विग्रह, मेरे धाम और मेरी लीलाओं को। लेकिन ग्रंथ भी समझने के लिए हम सक्षम नहीं होते कई बार, तो भगवान फिर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं समझाने के लिए कि वो फिर वो ग्रंथ हमको समझाते हैं। उसके लिए भी टाइम नहीं रहता है। तो भगवान ने कहा मैं फिर अपने हरिनाम के रूप में आता हूं, जहां पर हो वहां पर केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जहां पर हो वहां पर बैठकर केवल मेरा हरिनाम लो। कई बार वो भी लेने के लिए इच्छा नहीं करती, तो भगवान कहते हैं मेरा प्रसाद खा ले, खाएगा ना रोज कुछ, तो मेरा प्रसाद खा ले, वहीं से तेरा उद्धार शुरू हो जाएगा। महाराज ने अभी आते ही जो भागवतम क्लास दिया उसमें महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने कई लोगों को, अमेरिकन, उनको प्रभुपाद गुलाब जामुन का जार दे देते थे, कुछ प्रीचिंग नहीं। प्रभुपाद जानते थे कि ये कोई भी दशा में नहीं है प्रीचिंग समझने के, तो उनको गुलाब जामुन का जार दे देते थे, ये जो इसको जाके रोज एक एक खाया करो और ये खत्म हो जाए तो वापस ले आना, मैं वापस बना के भर के दूंगा। महाराज बता रहे थे जस्ट बाय गिविंग जार्स ऑफ गुलाब जामुन दीज पीपल दे वर ट्रांसफॉर्म्ड एंड बिकेम डिवोटीज ओनली बाय ईटिंग गुलाब जामुन। एक सच्ची घटना है, एक व्यक्ति, ये यूरोप की घटना है, ये व्यक्ति को कुछ ऐसी बीमारी हुई एक्सीडेंट के बाद कि इसके जीभ के टेस्ट बड सब खत्म हो गए। ये कुछ भी खाता कुछ उसको टेस्ट ही नहीं लगता उसमें। तो एक बार ये गलती से गोविंदा रेस्टोरेंट, इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट में गया और वहां जब इसने गोविंदा का जो प्रसाद खाया तो इतने समय बाद पहली बार इसको टेस्ट वापस आया। ये सच्ची घटना है। और फिर वो जब वापस घर, उसको लगा कि ठीक हो गया, जब वापस घर में गया तो जो भी खाता कुछ टेस्ट नहीं आता, ये क्या हो रहा है। फिर वापस गोविंदाज में आया, गोविंदाज में खाया तो वापस वो टेस्ट रेस्टोर हो गया। तो अब उसकी हालत ये हो गई कि उसको यदि कुछ खाना है तो केवल प्रसाद, मरता क्या ना करता उस प्रकार से, केवल प्रसाद। तो दिन रात वो गोविंदाज में आके खाता, उसको समझ में नहीं आया कि यहां पर क्या है ऐसा कि मेरे टेस्ट बड्स इधर ही एक्टिवेट होते हैं, बाहर जाने के बाद नहीं होते। सोचो वरदान था एक बहुत बड़ा, मैंने जब सुना तो मैं ऐसा वरदान मिलना चाहिए हम सबको। एक बंबई में एक स्टूडेंट हमारे प्रोग्राम प्रेरणा वगैरह इसमें आता था, फिर कुछ साल बाद उसने आना बंद कर दिया, मतलब जिसको इंग्लिश में या इस्कॉन के इंग्लिश में ब्लूप बोलते हैं ना, ब्लूप हो गया। ये ब्लूप शब्द पता है इस्कॉन में कहां से आया? किसी सरोवर में आप यदि कोई छोटा सा पत्थर फेंको, पेबल फेंको, तो जो आवाज आती ना ब्लूप, तो वहां से आया कि जब वो भक्ति छोड़कर माया देवी के सरोवर में ब्लूप जाता है तो इस्कॉन में उसको बोलते हैं ब्लूप्ट। तो ये स्टूडेंट ये ब्लूप हो गया, चला गया, भक्ति वक्ति सब छोड़ दी इसने। तो सायन हॉस्पिटल के पास से ये गुजर रहा था, इसका एक्सीडेंट हुआ, ये मोटर बाइक पर था और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कोमा में चला गया। ये हॉस्पिटल पास में ही था तो उधर भर्ती हुआ कोमा में, और जब कुछ 15 दिन कोमा में रहा वो, उसके बाद बाहर आया तो डॉक्टर कह रहा था कि कोमा में मैंने पहली बार देखा कि किसी मरीज को बोलते हुए। तो उसने पूछा बोलते, मैं बोल रहा था, हाँ तुम हरे कृष्णा बोल रहे थे। तो देखिए इसने जो भक्ति एक बार की छोड़ दी भक्ति इसने, और कोई इसका इरादा नहीं था भक्ति करने का, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं इसको। कोमा में फुल स्टॉप आने से पहले, शायद इसलिए कोमा बोलते हैं उसको। पता नहीं, मैं पहली बार मेरे को समझ में आया, शायद इसलिए कोमा बोलते होंगे, अभी फुल स्टॉप आने वाला है। तो कोमा में वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र उसको याद। आजकल इस्कॉन में एक प्रभुपाद की शिष्या ईशा माता जी, इनके विषय में निरंजन महाराज बहुत लोगों को प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे भी एक भक्त ने ये ईशा माता जी का एक वीडियो भेजा, ये देखने लायक वीडियो है। ईशा माता जी, उनकी उम्र अभी शायद 90 से ऊपर होगी, और ये प्रभुपाद की शिष्या बनी जब ये केवल 20-25 साल की थी, और तब से लेके अब तक ये ईशा माता जी बीबीटी में उन्होंने सेवा की, और ऐसी प्रभुपाद की सेवा की। ये कोई बहुत बड़ी सन्यासी नहीं, कोई जीबीसी नहीं, कोई टेंपल प्रेसिडेंट नहीं, कोई प्रचारक नहीं, सिंपल लेडी। और अभी इनको एक बीमारी हुई है, जैसे कि एमनीजिया की हमने चर्चा की, वैसे अल्जाइमर्स। सो अल्जाइमर्स में भी आप सब कुछ भूल जाते हो, तो इनको ये बीमारी है। तो ये वीडियो निरंजन महाराज ने जो भेजा, इस वीडियो के अंदर वो मिलने गए ईशा माता जी से, और ये ईशा माता जी किसको नहीं पहचानती, किसी अपने सगे संबंधियों को नहीं, किसी और भक्तों को पहचानती नहीं, कुछ भी नहीं पहचानती है, सब भूल चुकी हैं। लेकिन जैसे ही इनके सामने निरंजन महाराज ने हरे कृष्णा बोला, तो हरे कृष्णा अलग अलग ट्यून में गाना शुरू की। कभी मौका लगेगा तो मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। इतना वो टचिंग वीडियो है कि ये ईशा माता जी किसी को नहीं पहचानती, कुछ बोल नहीं सकती, कुछ इनको याद नहीं कि लैंग्वेज क्या होता है। आपको लैंग्वेज बोलने के लिए मेमोरी होना चाहिए ना, वर्ड्स का। सब कुछ चला गया इनका, केवल हरे कृष्ण महामंत्र, और वो भी अलग अलग ट्यून में। शी ओनली रिमेंबर्स हरे कृष्ण महामंत्र एंड शी कैन ओनली चैंट हरे कृष्णा 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 हरे तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसी स्थिति कब हमारी भी आएगी, हमारी उल्टी, कि हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़कर सब कुछ याद आता है, जबकि समय जो नहीं आना चाहिए वो भी आता है, जो कभी सोचा भी नहीं वो भी आते रहते हैं याद। दिस इज द ग्रेटेस्ट बेनिडिक्शन। मुझे ये लगा कि इन्होंने जो श्रील प्रभुपाद की ऐसी सेवा की, मेरे ख्याल से शायद YouTube पे आप देख सकते हैं, ईशा माता जी अगर आप टाइप करें तो, होपफुली शायद YouTube पे हो। तो मुझे लगा कि इन्होंने जो प्रभुपाद की ऐसी सेवा की, तो इनको प्रभुपाद ने क्या वरदान दिया, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है कि अपने अंत समय में सब कुछ और भुला दिया एक्सेप्ट द महामंत्र, और सब कुछ भुला दिया। ये है परफेक्ट टाइमिंग। अभी तक हम कौन से पॉइंट पे हैं? परफेक्ट टाइमिंग पे, ध्यान में रहे, टाइमिंग ज्यादा हो रहा है लेकिन परफेक्ट टाइमिंग। तो हम कई लोग, कई बार लोग पूछते हैं कि ये इतना माला करने का जरूरत है, 16 माला, और कई बार 64 माला भी लोग करते हैं, उसके ऊपर बोल दिया कीर्तनीय सदाहरी, तो ये इतना करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना करने की जरूरत है? क्योंकि हमारे सिस्टम में हमने इतने फॉरेन एलिमेंट्स डाल रखे हैं, और इतने जन्म जन्मांतर तक हमने 64 माला पता नहीं कैसे कैसे चीजों की है। इसलिए उसको डीप्रोग्राम करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई जिसको बोलते हैं, डिटॉक्सिफाई प्रोग्राम होता है ना, सब टॉक्सिन्स बाहर निकालना, तो उसके लिए हमको इतनी बार सुबह से लेके जो भी कुछ हो उसमें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, कि यदि हम नींद में भी हमको मच्छर भी काटे तो हरे कृष्णा बोलना चाहिए। यूरोप के, स्विट्जरलैंड के जो बहुत टॉप मोस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके विषय में बताया जाता था कि वो दिन भर 10-10 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और रात को जब वो बुक वैन में सोते थे तो सोते सोते भी हाथ ऐसे जा रहा है, और बोल रहे हैं वो सोते सोते, वुड यू लाइक टू सी भगवत गीता, नींद में है पूरा। जैसे हमारे ब्रज बिहारी प्रभु जो यहां पे आए थे, वो एक बार बता रहे थे मुझे कि उनके कोई जान पहचान के वो मृत छैया पर हैं अभी, बस अभी कुछ चंद सांसें बाकी हैं उनकी, मतलब कॉमा से फुल स्टॉप आना ही है अभी बस, ऐसी स्थिति में कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ किसी के साथ आदान प्रदान नहीं कर पा रहे, तो मरते समय उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे 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 कर रहे, ये हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे। तो सभी अचरज की क्या हो रहा है, खाली उनके परिवार वाले समझ गए। तो ब्रज बिहारी प्रभु ने पूछा कि ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहे, क्या हो रहा है, और फिर ऐसे ऐसे करते करते मर गए हो। तो उनके परिवार वाले, उनके बेटे ने कहा कि ये ना कपड़े के व्यापारी थे ना पूरे जीवन भर, तो हर समय 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा वो नापते रहते थे दुकान में, वो होता ना वो मीटर का उनकी फुटपट्टी होती है, तो लोग आते थे जो भी खरीदने, कितना मीटर से नापते रहते थे। तो मरते समय क्या हुआ, यही कर रहे हो, क्योंकि दिन जीवन भर प्रैक्टिस किया क्या, कितना मीटर कपड़ा, कितना मीटर कपड़ा। तो यदि कोई कितना मीटर कपड़े की प्रैक्टिस करते करते मरते समय वही कर पाएगा, तो क्यों नहीं हम यदि जीवन भर प्रैक्टिस करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों नहीं हमारे अंदर भी वो स्वाभाविक रूप से ये महामंत्र के प्रति ऐसा आकर्षण बन जाएगा। तो भगवान का जो मेमोरी रिकवरी प्लान, पास्ट टाइम्स, धाम, डीटीज, स्क्रिप्चर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, होली नेम, प्रसाद, और अगर इसके बावजूद कोई सुधरता नहीं तो भगवान फिर यमदूत को भेजते, वो भी इंडिकेटर है, वो भी उनका रिकवरी प्लान है। और ये भी इंस्टेंसेस हुए हैं, सैन डिएगो अमेरिका में एक इंडियन एनआरआई मिस्टर प्रकाश, तो ये मतलब इनकी पत्नी इस्कॉन में आती थी, ये इतना नहीं आते थे, ये टेनिस खेलते थे, लॉन टेनिस। तो एक बार लॉन टेनिस खेलते खेलते इनके ब्रेन सेल रप्चर हो गया एक, और वापस ये कोमा में चले गए। और फिर जब ये कोमा से बाहर आए तो इन्होंने डॉक्टर को कहा, दे केम 4 times, एक ही लाइन बार बार ये बोल रहा था, दे केम 4 times, दे केम 4 times। तो डॉक्टर ने बोला कि दे केम ओनली वंस, तो डॉक्टर को लगा ये अपने परिवार वालों के लिए बारे में बोल रहे, बोले नो, दोज यमदूतास केम 4 times, 4 बार आए वो। और उनको कैसे पता, क्योंकि जो अपनी इस्कॉन की बुक है सेकेंड चांस, तो वो सेकेंड चांस हर समय उनके घर में वो देखते रहते थे, कभी खोल के पढ़े नहीं उसको, कवर पेज में क्या है, अजामिल और यमदूत और विष्णुदूत, तो वो उनको बार बार वो ये आए थे, 4 बार आए थे। और उसके बाद फिर वो जो वहां के टेंपल प्रेसिडेंट बद्री नारायण प्रभु, उनको बुलाए, बोले कि आज से मैं 16 माला चालू करने वाला हूं, क्योंकि जो मैंने भयावह दृश्य 4 बार देखा, ये लोग आए, आके मैं रेडी नहीं था, शायद पता नहीं भगवान भेज रहे थे मुझे सुधारने के लिए इनको, तो आज से मैं 16 माला चालू करूंगा। तो भगवान वहां तक भी जाते हैं हमको इंडिकेट करने के लिए। कृपामय प्रभु, एक और प्रभुपाद के डिसाइपल लंदन के, बहुत सीनियर डिसाइपल है, वो बता रहे थे एक बार कि वो अपने पिताजी को बहुत प्रचार कर रहे थे। पिताजी कभी भक्ति अपना ही नहीं उन्होंने, हर समय अगेंस्ट गाली देते थे इस्कॉन को। जब वो अपने अंतिम समय, उन्होंने भी यमदूत को देखा, और जब उन्होंने यमदूत को देखा तो उन्होंने अपने बेटे कृपामय प्रभु को बुलाया और कहा, आई हैव टू रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन इज डेफिनेटली देर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड सेकेंड रियलाइजेशन इज आई एम नॉट गोइंग। मतलब उसके साथ साथ थर्ड रियलाइजेशन क्या था, आई एम गोइंग समवेयर एल्स, क्योंकि जो मेरे को लेने आए थे, हमारे एक ब्रह्मचारी गौर गोविंद प्रभु, वो मेरे को एक बार बता रहे थे कि वो जब बीमार अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट थे बॉम्बे में, तो उन्होंने अपनी आंखों से यमदूत को देखा। वो एडमिट हैं और बहुत सारे और पेशेंट्स हैं, तो यमदूत आए और ये बोल रहे हैं डॉक्टर्स को, कह रहे यमदूत घूम रहे हैं उधर वार्ड में, हॉस्पिटल में ज्यादा घूमते हैं वो लोग। तो गौर गोविंद प्रभु बोले, और जिस वार्ड के अंदर वो जो कूपे था उसके अंदर गए, उसके तुरंत 2 मिनट बाद वो पेशेंट मर गया। श्रीनाथ जी प्रभु बता रहे थे, वो जब ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनका बाईपास हुआ था, उसके बाद एडमिट थे ब्रिज कैंडी में, इंडिकेटर MH15C7124 मारुति डिजायर इज रॉन्गली पार्क्ड। किसी का डिजायर ठीक नहीं है बाहर जिनके सामने पार्क। तो श्रीनाथ जी प्रभु वो मुझे बता रहे थे, जब वो एडमिट थे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, उन्होंने अपनी आंखों से यमदूत को आते हुए देखा। कितने सारे पेशेंट्स वहां पर, उनको वो यमदूत सब तैयारी में आए थे, उन्होंने बहुत एक कुछ ग्राफिक चीज भी देखी। आई सॉ यमदूतास वर फ्राइंग स्टूल पकोड़ास। हरे कृष्ण। तो भगवान का जो ये ध्यान में रखना रिकवरी प्लान का सीक्वेंस, मेमोरी रिकवरी प्लान का सीक्वेंस भगवान का देखना, कि इतने इतने अलग अलग लेवल्स पे भगवान हमारा जो एमनेजिया याददाश्त हमारी चली गई है उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान कितना दिमाग लगाए हैं। देखो किसके लिए, हमको नींद से उठाकर याद दिलाने के लिए कि ये तुम्हारा घर नहीं है, वहां है तुम्हारा घर। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो हमको कार्यक्रम दिया है, ये पूरा जो इस्कॉन का प्रोग्राम है, हमारी साधना भक्ति का प्रोग्राम, ये है क्या, इट इज नथिंग बट कृष्णाज मेमोरी रिकवरी प्लान। हम लोग जो एमनेजिया में हैं, और इसलिए हमें समझना क्या है कि यहां पर ये जो थर्ड लेसन, कृष्णा सेंडिंग रिमाइंडर्स टू द ब्राह्मणास थ्रू हिज कवहर्ड बॉयज, सो कृष्णा इज कंटिन्यूअसली सेंडिंग रिमाइंडर्स इन आवर पर्सनल लाइफ, समटाइम्स थ्रू अवर ओन बॉडी, हमारे शरीर के थ्रू भगवान इन रिमाइंडर्स भेज रहे हैं कि बस हो गया, बंद करिए इंद्रिय भोग, ये शरीर जब इतना व्याधि में चला जाता है, या फिर दूसरों के शरीर के द्वारा, या फिर हमारे ही परिवार वाले रिमाइंडर बनकर आते हैं, इंडिकेटर बनकर आते हैं, या हमारे गुरु बंधु, अवर गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स, अवर गुरु वर्ग, स्पिरिचुअल मास्टर्स, अलग अलग तरीके से वी जस्ट हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट एंड कॉन्शियस. दिस इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियसनेस. वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ डिकोडिंग द रिमाइंडर्स ऑफ कृष्णा विच द ब्राह्मणास फेल्ड टू डू, विच द वाइव्स ऑफ द ब्राह्मणास इमीडिएटली डिकोडेड एंड गॉट द मर्सी. तो अब जो अगला लेसन है, घबराइए मत, अगली बार करेंगे. अभी खाली आपको एक रिमाइंडर इंडिकेट कि अगला लेसन जो कि और एक महत्वपूर्ण लेसन है, फोर्थ लेसन. आज हमारा प्लान था दो लेसन लेने का, तो फोर्थ लेसन है इन आवर प्रीचिंग मेनी टाइम्स विल बी रिजेक्टेड. Like how the cowherd boys were rejected by these brahmanas. So in our preaching, many times we will be rejected like anything. जैसे इनको दुत्कार के भगा दिया वैसे होगा. So be ready. Preaching is not always people will come with garland in the hand and bead bag in the hand. प्रभुजी बताओ, आप बताओ कितनी माला करूं, आप बोलो उतनी माला करूंगा. नहीं, मेनी टाइम्स प्रीचिंग विल बी टोटली ऑपोजिट. वो हमको बोलेंगे क्यों समय बर्बाद कर रहा है. सो दैट विल बी द फोर्थ लेसन विच वी शैल डिस्कस कमिंग संडे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम किसी का कोई प्रश्न? Any comments, questions?
Hare Krishna. Last Sunday we discussed about one sub point in the lesson, that intentions should be seen beyond the behavior. So while contemplating on your beautiful lecture, I, as an exercise, did one thing that whoever person I was meeting, I was trying to see him by his intention and not by his behavior. But somehow ultimately I felt that I was finding it difficult, because then I realized it is because of my imperfect senses that I am not able to judge, or I am not able to see what is the person's intention. And whatever I was guessing or looking into was my preconceived notion about that person. So my intentions were directly going in the direction of the preconceived notion which I had about that person. So what is the key to decode the intention? Like, because we have the imperfect senses, so we cannot look beyond the behavior. And that is what the quarrel between the two persons take place. This is how.
So herein what I can understand is you had a certain intention about that person, and your intention about that person is actually creating an obstacle in trying to understand the other person's intention. So the problem is now with the individual, not with the other person. Okay. So first, you have to change your preconceived notion, as you said, about that person by using Guru Sadhu Shastra. That's, say, for example, say Ajamil's story. If Ajamil's story you hear only half, then what preconceived notion you will have? या मजे का जीवन था उसका तो. He enjoyed, है ना, as a spiritualist also and as a sense enjoyer also. So when you hear the entire story of Ajamil, then you will come to know, then your preconceived notion will be differing, changed after understanding the entire story. Not just the entire story, then what the Acharya's comment on Ajamil, like Vishwanath Chakravarti Thakur, he comments that Ajamil's chanting was offenseless. Now we may have a preconceived notion that Ajam is chanting Narayan. So what is so great about that? But when we hear from the Acharyas, they explain that how it was offenseless because he didn't know the glories of the holy name and it was out of desperation he was calling out. So these things you come to know through Guru Sadhu Shastra. So it's not that simply you keep looking at people's intentions and try to decode it using your intelligence. We do not have any intelligence. We decode the other person's intention using Guru Sadhu Shastra. So if you see someone behaving in a certain way and you want to know the person's intention, open the scripture. Or refer to some sadhu. And then try to find out, rather than using your own preconceived notion. So that's what. Now, say for example, this incident in Srila Prabhupada's life. Prabhupada was giving lecture and one person started shouting at Prabhupada. Okay. So his behavior was something very offensive. He started shouting at Prabhupada. And how Prabhupada decoded it? Using Shastra. What? Karma principle. Prabhupada said, maybe in my previous life, I might have done something like that to him. So Prabhupada didn't decode his intention or that particular incident just saying that I think like that. No, he used the karma principle mentioned in the scriptures. So that's what you should do. Anyone should. We all should do that anything, whatever indicators also, we should not think that, okay, the indicators which are coming, these are something which I'll try to understand using my intelligence now. We have to again refer back to the scriptures.
Hare Krishna. Dhanyavad Prabhuji. Bahut sundar class hua. Prabhuji, aapne right time ke baare mein bataya. Maya Devi ka nahi. Bhagwan ka right time. Jaise ki
Bhagwan bataya.
नहीं, वो भगवान का जो राइट टाइम है उनके बारे
अच्छा,
में
पूछता हूँ प्रश्न उनके बारे में
हाँ तो भगवान ने बराबर राइट टाइम पे गौर बालों को भेजा या नारद मुनि का भी बहुत सारा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी का भी तो कभी कभी प्रचार करते समय ऐसे होता है कि हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो बोलते कि आप तो बड़े भाग्यशाली है कि आपको राइट टाइम पे मिला है पर हम अभी हमारी उम्र जो है 40 है 50 है फिर भी हम उनको बताते कि ठीक है अभी तो मिला है तो वो बोलते कि हमें ये समय पे नहीं मिला और कभी कभी हमको ये भी लगता है कि यही कृष्ण भावना अगर हमको जब हम 5 साल के थे उस समय मिला होता तो शायद ये इसको कैसे समझे कि
जैसे ये जुहू के राधा रास बिहारी मंदिर में घटना हुई थी वहां पर रामराज प्रभु करके हैं रसराज प्रभु तो एक पिताजी आए उनके पास और बोले कि ये क्या मेरे बेटे को तुम ब्रह्मचारी बना रहे हो कोई उम्र है क्या उसकी तो रसराज प्रभु ने पूछा कौन सी उम्र होनी चाहिए बोले भाई ये सब वैराग्य सन्यास वगैरह जब बूढ़े हो जाते हैं 50 साल मेरी उम्र के तो रसराज प्रभु ने कहा ठीक है आप आ जाओ तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यही ठीक है इसको भी ले लो तो भक्ति कोई किसी भी उम्र में कर सकता है कोई ये नहीं बोल सकता है कि भाई आपका टाइम था इसलिए आपने किया मेरा टाइम नहीं है सारे उदाहरण है एक बार एक हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि कौन से स्टेजेस पे भक्ति की गई है प्रहलाद महाराज से शुरू करें तो गर्भ में और फिर हम आगे लें धृतराष्ट्र को या फिर ऐसे ऐसे जो एकदम वृद्ध अवस्था में जिन्होंने भक्ति शुरू की धृतराष्ट्र ने एकदम वृद्ध अवस्था में शुरू की और उसके बीच में अलग अलग स्टेजेस में कैसे ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में फिर कईयों ने युवावस्था में कईयों ने मिडिल एज में ऐसे तो भक्ति में भगवान ने इतने अलग अलग अंग दिए हैं कि कोई नहीं बोल सकता कि मेरे उम्र के लिए कोई अंग नहीं है भक्ति में आपके पास कोई नहीं बोल सकता तो सबसे पहले अगर कोई बोलता है कि मेरा तो टाइम चला गया तो आप उसके लिए जो हमारी नवधा भक्ति है उसमें से उसके लिए उपयुक्त। अब ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि कोई नहीं बोल सकता कि मैं युवावस्था में होता तो मैं करता, अभी कैसे करूं, नहीं, कोई ये नहीं कह सकते मैं प्रसाद इस उम्र में थोड़ी खाता हूं, मैं नहीं खाते तो हैं, उल्टा प्रसाद खाओगे तो ज्यादा स्वस्थ रहोगे। तो कितने सारे ऐसे हमारे भक्ति के अंग हैं जिसके द्वारा हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये बहाना मत दो कि ये उम्र के। और इस्कॉन में देखिए, इस्कॉन में आप देखिए न केवल शास्त्र के उदाहरण, इस्कॉन में कितने उदाहरण है कि कई कौन कौन से उम्र में आके उन्होंने भक्ति की और वो भगवत धाम के रास्ते पे है। और यदि हम अपने बारे में सोचें कि अगर मैं 5 साल का होता भक्ति में अगर उस समय आया होता, हाँ अच्छी बात होती, परंतु इसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि है कई ऐसे भी उदाहरण जो कि इस्कॉन में बच्चे पैदा हुए हैं जो कि 5 साल के बचपन से जो खाया वो केवल प्रसाद ही खाया, लेकिन बड़े होने के बाद आज कहाँ है पता नहीं। बहुत से उदाहरण है ऐसे। तो आप इस भ्रम में मत रहो कि हम 5 साल के होते तब भक्ति करते तो आज क्या होते, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे हम ब्रह्मचारी आश्रम में एक ऐसा नियम है कि अगर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो पहले वो बाहर नौकरी वोकरी करके फिर आए, तो क्यों, क्योंकि धक्के खा के आएगा तो फिर समझ में आएगा कि इसका मूल्य क्या है। तो वैसे ही कई बार जब हम इस उम्र में भक्ति में आते हैं, हो सकता है हम यहाँ पर जो ब्रह्मचारीज और बाकी स्टूडेंट्स वगैरह 20 साल के बाद 20 उम्र के बाद भक्ति में आए, तो जो भी दुनिया भगवान ने उनको दिखाई उसके प्रति अब उनको आकर्षण नहीं रहेगा इतना कि हाँ भाई वो बीन देयर डन इट ऑल हो गया, वो कर लिया है, नहीं उसके बाद वो फिर से चखना नहीं है, फिर से चटका नहीं खाना है। लेकिन कई बार देखा गया, इस्कॉन में देखा गया है कि जो भक्तों के घरों में जन्मे हैं, ऐसे बहुत से वेस्ट में उदाहरण है, जो गुरुकुल में रहे, इस्कॉन के गुरुकुल में रहे, सोचो एक तो भक्तों के परिवार में जन्मे और उसके बाद में इस्कॉन के गुरुकुल में रहे, लेकिन जब वो बड़े हुए टीनेज अवस्था में आए तो उनके मन में आ रहे बाकी ने तो सब कुछ कर लिया, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने तो खाली दिन रात ये हरे कृष्णा और डीटीज को ही देखा, तो चखने के लिए वो लोग सब छोड़ छाड़ के वहां गए और बाद में घूम फिर के आए, वापस आ भी रहे लेकिन फिर वो डिटूर हो जाता है ना, कई बार आते भी नहीं है। तो हमें क्या समझना चाहिए कि जो अभी हमें मिला है उस पर फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि जो नहीं मिला, जो मिला है उस पर फोकस करना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरे लिए अभी ये स्थिति परफेक्ट है। यदि मैं भगवान के प्रति अग्रसर हो रहा हूं तो मेरे लिए स्थिति परफेक्ट है, परफेक्ट टाइमिंग मेरे लिए है। जैसे कई बार मैं मेरी मदर को बोलता हूँ कि बहुत अच्छा किया मुझे सबसे लास्ट में पैदा किया, कि बहुत रियलाइजेशन देखने को मिल जाते हैं पहले। कहीं से आवाज आ रही थी।
हरे कृष्णा प्रभु, एक क्वेश्चन है।
हाँ
सो नॉर्मली यू नो जो रिमाइंडर्स आते हैं वो कभी इनकन्वीनियंट आते हैं कभी कन्वीनियंट भी आते हैं, सो वी नॉर्मली टेंड टू टेक कन्वीनियंट रिमाइंडर्स और इनकन्वीनियंट रिमाइंडर हम लोग अवॉइड करते हैं। तो इसमें माया के भी रिमाइंडर्स आते हैं, भगवान के भी आते हैं, सो हाउ टू डिफरेंशिएट कि कौन सा माया का है और कौन सा भगवान का है।
सिंपल, एनीथिंग विच टेक्स यू क्लोजर टू कृष्णा is a favorable reminder, anything which takes you away from Krishna, जैसे इन्होंने जो question पूछा था, तो उसको decode करना कैसे, गुरु साधु शास्त्र है कि नहीं। तो अभी मान लो कि हमें कुछ बीमारी हो गई, तो अब अगर हमें बीमारी हुई, अगर वो अमेरिकन सीरियल हम देखेंगे तो हम लोग क्या डिकोड करेंगे कि एंजॉय करो भैया, पता नहीं अब ये शरीर कब तक स्वस्थ रहेगा। और वो बीमारी के रिमाइंडर में अगर हम परीक्षित महाराज के भागवतम को खोलेंगे तो क्या समझेंगे, है कि नहीं? तो ये तरीका है रिमाइंडर को समझना कि ये माया देवी के द्वारा है या भगवान के द्वारा। कई बार माया देवी के रिमाइंडर भी हमको भगवान की ओर ले जाने के लिए होते हैं, हम लोग अपनी तरफ से उसको गलत डिकोड कर और भगवान से दूर जाने लगते हैं, है कि नहीं? तो ये हम बोल सकते हैं कि अजामिल ने जो देखा और ये सब जो नलकोर मणिग्रीव जो कुछ इनका उदाहरण है, यदि ये सब कुछ नहीं हुआ होता उनके साथ जो हुआ, तो जो उनको आगे चलकर कृपा मिली वैसी कृपा नहीं मिली होती। तो माया देवी के भी रिमाइंडर्स और इंडिकेटर्स वार्निंग्स को हमको कृष्ण कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और यूज करना है भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए, उसको यूज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय। इस ग्रह शिक्षा अष्टकम प्रभु की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।